ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य अंतर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष स्वरूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला अरि दर गदादि भी उपलक्षिते निज पुरुष हृदय लिखिते न आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमाने उच्च स्तरां भक्ति अनुदिनम एधमान दया अजायत। एवं इस प्रकार कर्म विशोधया श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित करते हुए अपने पुण्य कर्म के फल की अभिलाषा न करते हुए कर्म शुद्धि से विशुद्ध सत्वया भरत महाराज का, जिनका जीवन पूर्णतः शुद्ध था, अंत हृदय आकाश शरीरे योगियों द्वारा ध्यान किए जाने वाले अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्मणि निराकार ब्रह्म में जिसकी आराधना निर्गुण ज्ञानी करते हैं, भगवते श्री भगवान में वासुदेवे वासुदेव श्री कृष्ण में महापुरुष परम पुरुष का रूप स्वरूप आकार उपलक्षणे लक्षणों द्वारा श्रीवास भगवान के वक्षस्थल का चिन्ह श्रीवस कौस्तुभा कौस्तुभमणि वनमाला पुष्पों का हार हरिदरा चक्र तथा शंख गदायादि गदा इत्यादि अन्य लक्षणों से उपलक्षिते पहचाना जाकर निज पुरुष हित लिखिते न निज पुरुष हित लिखिते न जो अपने भक्तों के हृदय में चित्र की भांति स्थित हैं, आत्मने अपने मन में पुरुष रूपेण अपने स्वरूप से विरोचमाने चमकता उच्च स्तर अति उच्च स्तर पर भक्ते भक्ति अनुदिनं दिन प्रतिदिन ये धमान बढ़ता हुआ रया बलशाली अजायत प्रकट हुए। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कल्मषहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं और भक्तजन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी श्री भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। उनका शरीर श्रीवस्त्र कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से सुशोभित है और हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। नारद जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका ध्यान करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। वे योगियों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञानी लोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें वे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 2:2:8 में हुई है। केचित् देहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। परमात्मा सभी जीवों के हृदयों में स्थित हैं। उनके चार हाथ होते हैं जिसमें आयु धारण किए रहते हैं। ऐसे सभी भक्त को परमात्मा का ध्यान धरते हैं। वे मंदिर के अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। वे ईश्वर के निर्गुण स्वरूप तथा उनके ब्रह्म तेज से भी परिचित होते हैं।
किस प्रकार राजर्षि भरत अपनी कृष्ण भावना का विकास किए, इस प्रसंग में कहा गया है। अनुदिनम एधमान दया भक्ति। राजर्षि भरत जब राजा थे तो घर पर ही भगवान की आराधना करते थे। मुख्य रूप से बड़े बड़े यज्ञ या छोटे यज्ञ सब प्रकार के यज्ञ करते थे और भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। इस प्रकार कर्म विशुद्धया एवं कर्म विशुद्धया, इस प्रकार विशुद्ध कर्म करने के कारण विशुद्ध सत्वस्य उनका हृदय शुद्ध हो गया। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि अप्राकृत जगत सब प्रकार की अशुद्धियों से युक्त है। विशुद्ध सत्व से अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी सत्ता को या अपने हृदय को शुद्ध करना होता है। भगवान गीता में बताए हैं, दैवी संपदा में, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति शुरू में बताए। इस संसार में भक्त को या दैवी सद्गुण वाले व्यक्ति को कोई भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं और सब समय सब जगह पर हैं, तो वह किसी बात की चिंता नहीं करता है, भय नहीं करता है। यह पहला गुण है। भगवान दैवी संपदा का वर्णन किए हैं, डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन किए हैं। उसमें पहला गुण है अभयम, भय नहीं करना है किसी भी विषय में, भय नहीं करना चाहिए। और दूसरा गुण बता रहे हैं सत्व संशुद्धि, अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध कर लेते हैं दैवी गुण वाले। इस संसार में स्वाभाविक हृदय गंदा हो जाता है। हृदय में अनेक कामनाएं, अनेक वासनाएं और चिंता, हर्ष आदि होते रहते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के संपर्क से हर्ष आ जाता है और तुरंत विषाद आ जाता है। लेकिन दैवी संपदा वाला व्यक्ति इस तरह से प्रकृति के प्रभावों से बाधित नहीं होता है। इसका विशुद्ध सत्व होता है, हृदय शुद्ध होता है। भरत महाराज का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया। क्यों? कर्म विशुद्ध है, उचित कर्म करने से, भक्ति करने से, भगवान की पूजा करने से। जीवन में हर एक समय ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं भगवान से कितना जुड़ रहा हूं, और कर्म होते ही रहते हैं तो उन सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अर्पण करना है उनको। इसको कर्म विशुद्धि कहते हैं। अन्यथा सभी कर्म हमें बांधते हैं। असुर स्वभाव के लोग इसके ठीक विपरीत होते हैं। उनका विचार अपने स्वतंत्र होता है। भगवान ने वर्णन किया है 16वें अध्याय में, असत्यम अप्रतिष्ठम च जगत आहुरनेश्वरम। असुर लोग कहते हैं कि असत्यम, यह जगत बिल्कुल है नहीं, झूठा लग रहा है। हम लोग झूठा सब कुछ देख रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम, और यह कहीं है नहीं, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, इसका कोई फाउंडर नहीं है। जगत आहुरनीश्वरम, इस जगत को वे लोग कहते हैं कि ये स्वतंत्र है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान या भगवान का कंट्रोल नहीं है संसार में। आप परस्पर संभूतम, इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई प्लान नहीं है। क्यों जगत बनाया गया? इसको बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला ईश्वर नहीं है, और यह किसी प्लान से नहीं बना है। यह अशुद्ध हृदय का लक्षण है। इस तरह से सोचना कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और भगवान का कोई बनाया हुआ नियम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप परस्पर संभूतम, कोई कारण नहीं है जगत बनाने का। सब चीज के पीछे कारण होता है। जैसे यह मंदिर बना है, तो मंदिर कौन बनाया, क्यों बना, किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्या जरूरत थी, उसके पीछे प्लान है ना। फाउंडर आचार्य ने सब कुछ सेट किया। तो इसी प्रकार से यह जगत बना तो इसके पीछे इसकी भूमिका है। क्यों बना, इसकी क्या जरूरत थी। एक प्रसिद्ध गाना हम लोग पहले सुनते थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई है, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाया संसार, तो असुर लोग कहते हैं कोई प्लान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, कि मन्नत काम है तो काम। ये लोग अपने अनुमान से सब कुछ कर लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ काम के अलावा, काम बसना के अलावा और कोई कारण नहीं है। देखा जाता है कि दो जीव परस्पर संग करते हैं किसी भी योनि में तो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसमें प्लान क्या है, कोई कारण नहीं है। केवल कारण है काम की मान्यत, क्या कारण है आपस में बोलते हैं, कोई नहीं, बस स्वतंत्र है, यह जगत उत्पन्न हुआ है काम वासना से और यह कामोपभोग के लिए ही बना हुआ है। वे लोग खुलम खुला इस बात का प्रचार करते हैं कि खूब खाओ पियो, इंद्रिय तृप्ति करो, बस यही संसार बनाने का लक्ष्य है और कोई दूसरा प्रयत्न नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो यह अतिशय अशुद्ध हृदय वालों का ओपिनियन है। तो राजर्षि भरत शुद्ध विचार वाले हो गए। शुद्ध विचार है कि ईश्वर हैं और ईश्वर के योजना के अनुसार इस विश्व का निर्माण हुआ है और यहाँ हमें सुखी जीवन जीना है, इस जीवन में भी और परलोक में बाद में भी, तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यह दैवी विचार है। प्रत्येक समाज में कोई न कोई नियम होता है, कुछ शास्त्र होते हैं, लेकिन समग्र मानव जाति के लिए मानवता के प्रथम कड़ी मनु महाराज ने समग्र मानव जाति के हित के लिए एक संहिता बनाई है। संहिता का अर्थ ही होता है सम्यक हित करने वाली, तो मनु संहिता उन्होंने ग्रंथ दिया, कैसे मानव अच्छा से जिएंगे, कैसे सुखी रहेंगे। तो उन्होंने मनु संहिता में, मनुस्मृति में कहा है कि एक नियम बनाया है, यह संसार स्त्री और पुरुष दो विभाग में बटा है, कुछ स्त्रियां हैं कुछ पुरुष हैं। तो मनुष्य के लिए कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा पुरुष के अधीन रहना चाहिए, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पिता के अधीन रहे और विवाह होने के बाद पति के अधीन, और यदि पति संन्यास ले लेता है, गृहस्थ जीवन से रिटायर होता है, तो पुत्रों के अधीन स्त्री को रहना चाहिए। ये हमारे सुख के लिए मनु महाराज ने विधान दिया है, इसके लिए नहीं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर रखा जाए, यह विचार उनका नहीं है। लेकिन आजकल के लोग इसको ऐसे कह देते हैं, ये तो प्राचीन विचार है, ये ठीक नहीं है। और हुआ क्या, संसार में बहुत आंदोलन हुए इसके विपरीत, और अमेरिका आदि देशों में, इंग्लैंड में लोगों ने यह नियम बनाया कि स्त्रियों को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिला है। समान अधिकार सभी विषय में। और इसके चलते मानव समाज में इतनी दुर्व्यवस्था छा गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पूरा संसार तबाह है। जब मूल मानवता का पिता नियम बनाया कि ऐसे रहना चाहिए ऐसे रहना चाहिए, तो स्त्रियां बच्चों के समान हैं। जैसे बच्चे को कंट्रोल में रखा जाता है वैसे तो स्त्रियों को रखना चाहिए, उन्होंने कहा था। लेकिन स्वतंत्र विचार वाले लोग, अशुभ लोग, कोई वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। वे नहीं सोचते कितना दीर्घ विचार करके भविष्य दृष्टा मनु महाराज ने कहा। तो असुरों का विचार है, वे मूल रूप से शास्त्रों को नहीं मानते हैं। भगवद गीता को भी नहीं मानते। तो इसके कारण अनेक दुख अनेक संकट उपस्थित हो रहे हैं। तो असुर लोग यही करते हैं, वो जो मन करता है वही करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। लेकिन भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा इस पर विचार नहीं जाता है। तो कर्म ऐसे करना चाहिए कि हमारी सत्ता हमारा हृदय शुद्ध हो जाए दिन पर दिन। ये अपनी जिम्मेदारी है प्रत्येक मनुष्य की, ये अपने को शुद्ध करे। तो शुद्ध कर्म करेंगे तब हम शुद्ध होंगे, अशुद्ध कर्म करके हम शुद्ध नहीं हो सकते। और कर्म शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना जरूरी है, और उसके अनुसार ईश्वर की क्या आज्ञा है उसके अनुसार कर्म करना। ऐसे कर्म हम करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान में हमारी भक्ति बढ़ेगी। अनुदिनम एधमान रहा, प्रतिदिन भक्ति का वेग बढ़ना चाहिए। आज जितनी भक्ति है, आज जितनी कृष्ण भावना है, कल उससे ज्यादा हो जाए, परसों कल से भी ज्यादा हो जाए, इस तरह दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम दिन पर दिन मृत्यु के निकट जा रहे हैं, अतः दिन पर दिन विकास करना चाहिए। कैसे भगवान में भगवती वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण में उनका क्या लक्षण है कि वे शंख चक्र वनमाला आदि धारण करते हैं और अपने भक्तों के हृदय में उसी तरह से अडिग रहते हैं जैसे दीवार पर बनाया हुआ चित्र। भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, वैसे परमात्मा रूप से वे सभी जीवों के साथ हैं, सबके हृदय में हैं। लेकिन अन्य जीव भूल जाते हैं पर भक्त भगवान को नहीं भूलते हैं, अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अभी चल अनुदिनम एधमान रहा, एधमान का अर्थ बढ़ता हुआ, भक्ति का वेग प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। इस तरह भक्ति करते करते जीवन के अंत में अर्थात इस शरीर से विदा होने के समय हम एलिवेट कर दिए जाएंगे। इस प्राकृत जगत में रहने के योग नहीं रहेंगे, बल्कि हम वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में प्रमोट कर दिए जाएंगे भक्ति के कारण। भगवान में भक्ति बढ़ेगी, उस भक्ति के प्रभाव से हम ब्रह्म हुआ या कल्पते। भगवान कृष्ण स्वयं कहे हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे धाम में आने के योग्य हो जाता है। अतः भक्ति की जो भी विधियां हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि 64 प्रकार की भक्ति है, वो अनंत प्रकार की भक्ति हो सकती है। भक्ति योगो बहुविधर मार्गे भामिनी भाव्यते। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माता जी, जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है। तो भक्ति के बहुत प्रकार है। हम भगवान का नाम जप करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान के बारे में पढ़ करके, भगवान के विषय में सोच, मन में सोच करके भक्ति कर सकते हैं। तो जो जो भी सुविधा रखा है, जो भी कैपेसिटी है, उसके अनुसार अपनी भक्ति करे। मुख्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। नवधा भक्ति में तीन मुख्य है। मंदिरों में जो भगवान का विग्रह देखते हैं, तो देखे हुए विग्रह को कहीं भी मन में सोच सकते हैं। मन का यह स्वभाव है स्मरण करना। और मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं, मन ही मन भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं और वाणी से भगवान का नाम जप कर सकते। कितना सरल है भक्ति, इतना सरल है जितना हमारा जीवन सरल है, जितना जीना सहज लगता है। जीने में कितनी आसानी है, आदमी आसानी से जी लेता है। तो भक्ति इतनी सरल है। एक शर्त है कि ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो व्यक्ति कर सकता है। भगवान द्वादश अध्याय गीता में कहते हैं, जतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय बना लेता है अब मेरा भक्त, दृढ़ निश्चय कि हमें करना है, निश्चय कर ले तो कोई कठिन नहीं है। बहुत कठिन से कठिन काम संसार में हो जाता है, मनुष्य कर लेता है। तो भक्ति तो अपना धर्म है, अपने जीवन के साथ है। जैसे सांस लेना, जीना अच्छा लगता है, उसके बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार भगवान का स्मरण कीर्तन हमारा जीवन होना चाहिए। हम इसके बिना नहीं रहेंगे। यह विचार बहुत अच्छा विचार है। राजर्षि भरत जब तक राजा रहे वे घर में भी राजकाज के समय भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहे, भगवान के भजन में लगे रहते थे, विविध यज्ञ होते थे, यज्ञ में बृहद प्रसाद वितरण होता था, तो हम लोगों के लिए कौन सा धर्म है? धर्म है भक्ति धर्म। भगवान कृष्ण में हमारी भक्ति बढ़े और हम बढ़ावे इसको, दूसरे जीवों को सुविधा देते हैं, मंदिर में आने वाले भक्तों को ये संकल्प देना चाहिए कि हम जरूर प्रचार करेंगे। और प्रचार में मुख्य है भगवान के बारे में जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का विस्तार करना है, मुख्य रूप से भगवद गीता, जो स्वयं भगवान का उपदेश है, अपने चरणों में आने के लिए, अपने धाम में जाने के लिए भगवान गीता में अनेक बार कहे हैं, तो उसको पढ़ने से उत्साह बढ़ता है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है और भक्ति करने का उत्साह बढ़ता है। इसलिए भगवद गीता का विशेष वितरण होना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन यथासंभव सब जगह फैलाना है, स्वयं भक्ति करते हुए आप दूसरों को भक्ति की सुविधा देना चाहिए। राजर्षि भरत स्वयं धर्म का पालन करते थे और सारी जनता को ये सुविधा देते थे, सबको देखते थे कि सभी अपने धर्म में लगे हैं, पितामह की तरह और पिता की तरह बड़े स्नेहवान थे, पूर्ववत्सल थे, जैसे माता पिता अपने बच्चे का हित करना चाहते हैं और लगे रहते हैं, वैसे सारी दुनिया में जितने जीव हैं चर या अचर ये सब भगवान के आवास हैं, तो सब कृष्ण को समझें, सुखी हों और जीवन उनका आगे बढ़े इसका प्रयत्न करना चाहिए। वृक्ष भी आगे चल करके शरीर बदलेंगे, उन्हें दूसरा शरीर मिलेगा, परंतु जो वृक्ष भगवान के नाम को सुनते हैं तो उनकी सदगति होती है। इसी प्रकार से कीट पतंग पक्षी मनुष्य जो कृष्ण भावना का श्री गणेश कर देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हायर जोनी प्राप्त होती है और अंत में पूर्ण कृष्ण भावना के स्तर पर हो जाते हैं और भगवान के धाम जाते हैं जहां कोई दुख नहीं है। और इस जगत में तो दुख के अलावा और कुछ नहीं है, दुखालयम अशाश्वत, यह नश्वर जगत है और दुख से भरा हुआ है। इस बात का अनुभव अवश्य करना चाहिए और सबको भगवत धाम ले जाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आसानी से कार्य हो सकता है, यही जीवन है, भक्ति करना ही जीवन है, और भक्ति से विमुख जीवन कोई जीवन नहीं है। श्रील प्रभुपाद भागवत के परपोर्ट में ये सब बातें कहते जाते हैं। प्रत्येक श्लोक में बहुत प्रेरणा है। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें वास्तव में कृष्ण भावना के लिए अक्षय स्रोत है। अच्छा, हरे कृष्ण।
भगवान परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, ये जो तीन है इसमें भगवान का अवतार समय अनुसार होता रहता है। परमात्मा भी हर एक जीव में जीव के साथ हमेशा अवतरित रहते हैं, तो क्या ब्रह्म ज्योति कभी अवतार लेती है? कोई भी स्वरूप में ब्रह्म ज्योति का अवतार होता है?
अवतार भगवान का होता रहता है। ब्रह्म ज्योति का अवतार तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश है। उसके बिना यह जगत अंधकार से भरा रहेगा। चैतन्य चरितार्थ में लिखा गया है कि ईश्वर मूर्ति भगवान का जो स्वरूप है प्रपंच में उतरता है उसको अवतार कहते हैं। वैसे भगवान इस जगत में हैं तो भगवान का गुण है, जैसे ब्रह्म ज्योति सभी होता ही है, लेकिन अलग से कोई अवतार ब्रह्म ज्योति का नहीं होता।
और महाराज जी, योगी और अष्टांग योगी और ध्यानी, उनको कहाँ जाना पड़ता है देह छोड़ने के बाद, कहाँ उनको स्थान मिलता है?
अष्टांग योगी सब अगर परफेक्ट हो जाते हैं तो भगवान के धाम ही मिलता है उनको। वैकुंठ धाम मिलता है। अष्टांग योगी अंततः यह सिद्धांत है कि कोई भी योगी हो वो भगवान को समझने लगता है, जब भक्ति करता है तब उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलता है। तपस्विनो ज्ञान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना ददर्पणम्। बिना भगवान की शरणागति के कोई सदगति नहीं मिलती है। अंत में भगवान की शरण में आना पड़ता है, तब परम गति होती है। अष्टांग योगी के लिए पतंजलि जी बताते हैं, अंत में समाधि का वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं कि भगवान विष्णु को समझना, उनको देखना समाधि में, यही योग की पूर्णता है। भगवान के सगुण साकार विग्रह को मन में देखना, इसी को योग कहते हैं। गीता में भगवान ने बहुत बार योग शब्द का प्रयोग किया है। योग का कहीं कहीं अर्थ है लिंकिंग, संबंध जोड़ना, योग है। तो किससे योग है? आत्मा का परम आत्मा के साथ योग, संयोग करना। और भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सभी शरीरों में है। तो संसार से चित्त हटा करके भगवान पर चित्त रखना, वह चाहे भगवान के धाम के रूप में हो, या मंदिर में स्थापित अर्चा विग्रह में, या हृदय में स्थित चतुर्भुज रूप में हो, कहीं भी होना चाहिए, योग होना चाहिए। और सबसे बड़ा योग है भगवान में अपनी अंतरात्मा को लगा करके स्मरण करना, ध्यान करना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजतोयो माम युक्त तमाम मता। भगवान कहते हैं मेरे विचार से समस्त योगियों में सबसे बड़ा योगी वह है जो अंतःकरण को मुझमें लगा करके मेरा ध्यान करता है। योगिनाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां योगिनाम, समस्त योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो मेरा भक्त है, मुझ में चित्त लगा करके मेरा ध्यान करते।
महाराज जी, त्रिकालज्ञ ये अष्टसिद्धि में आता है
क्या?
त्रिकाल, त्रिकालों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, ये मतलब जैसे नारद मुनि है।
तीनों काल का ज्ञान, श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय में सिद्धियों का वर्णन है। उसमें पढ़ना चाहिए, हमको धारणा नहीं।
महाराज जैसे कि भगवान परमात्मा में तो विराजमान है, जैसे सूर्य जहां पे भी गिरता है तो सूर्य तो अशुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान परमात्मा में विराजमान है, तब हम हृदय हमारा अशुद्ध कैसे हो जाता है? तो हृदय में भगवान जब जहां विराजमान है वो तो पवित्र है, शुद्ध है, तो फिर यहाँ पे हमारे मन के अंदर दूषित विचार, दूषित चिंता आता है, क्योंकि हालांकि भगवान उधर है तो कैसे कैसे हो जाता है?
भगवान है लेकिन भगवान इस प्राकृतिक जगत में कर दिए हैं ना सबको, प्रकृति के पदार्थों में हमारी चित्तवृत्ति रहती है, हम इसे भोगना चाहते हैं। जो भगवान जीव की इस अणु स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र है, वो भगवान के सामने भी गलत कर सकता है। जैसे एक बार देखा गया कि भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे की माला थी वृंदावन में, और फिर भी एक भक्त उनके गले से हार चुरा लिया है। तो प्रश्न उठा था कि भगवान क्यों नहीं मना किए? भगवान मना नहीं करते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप प्रेम से समर्पण करें। हमारे अंदर प्रकृति के संग में रहने से ये सब दोष आ जाते हैं, अज्ञान आ जाता है।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान को भगवत गीता में निराकार बताया, तो हम तो लोग तो साकार भगवान को मानते हैं, तो भगवान साकार हैं कि निराकार, इस बात का?
भगवान दोनों हैं और दोनों नहीं हैं।
निराकार भी हैं, साकार भी हैं?
निराकार भी हैं, साकार भी हैं और दोनों नहीं हैं।
दोनों नहीं, तो दोनों नहीं है सब?
ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया है भागवत में। हाँ। वास्तव में भगवान सगुण है।
हाँ।
और निर्गुण है। भगवान निराकार हैं, भगवान साकार हैं। और ये भी कहा गया भगवान न साकार हैं न निराकार हैं, दोनों से परे जो कुछ है वो हैं। हम लोग भी भगवान को साकार नहीं मानते हैं। साकार का ही अर्थ होता है कि भगवान का कोई मेटेरियल आकार नहीं है, भौतिक आकार नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो धारणा होती है वो भौतिक आकार की ही होती है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि वे निराकार है, मतलब भौतिक आकार के नहीं है। उनका दिव्य सच्चिदानंद आकार है। कैसे इसको समझा जा सकता है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा को अपने मुख में दिखाए, संपूर्ण संसार दिखा दिए, छोटा सा बच्चा अपने मुख में सारी दुनिया को दिखा दिया, उस दुनिया सब है तभी न दिखा दिया। और इतना ही नहीं, माता यशोदा देख रही थी कि एक यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को डांट रही है, मुख में ही कृष्ण के मुख में यशोदा है, सारा संसार है और कृष्ण भी थे। ये अद्भुत बात है। बस भगवान के विषय में यही सोचना चाहिए कि वे अद्भुत हैं। और वास्तव में सब कुछ है, वे परमात्मा है और वे ब्रह्म है, निराकार और हैं सब जगह। कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। भागवत में तो यह भी कहा गया है कि यह सारा जगत कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही जगत के रूप में व्यक्त हुए हैं। चाहे भूमि, जल या पत्थर, लकड़ी, जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, सब भगवान ही हैं। कोई भी चीज भगवान से निकली है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको भगवान नहीं जानते हैं, कोई ट्रक से लाकर गिरा दिया, भगवान से ही सब उत्पन्न हुआ है और भगवान को सब पता है। तो किमतत वस्तु रूपेता, कौन ऐसी वस्तु है जिसको ये कहा जाए कि ये भगवान नहीं है? कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ भगवान से निकला है। और इस दृष्टि से चूंकि भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्ति शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है। तो अभेद की दृष्टि से कह दिया जाता है कि जगत कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण ही जगत के रूप में है। जगत कृष्ण नहीं है, कृष्ण जगत है।
हरे कृष्णा। भक्त को भक्ति में अनुदिन आगे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि भक्त का मन में ऐसा महसूस होता है कि वो आगे बढ़ने के लिए बदली पीछे आ रहा है। इसका कारण कैसा और कहां पता करने का है?
जो सच्ची भक्ति करता है उसको तो ऐसा अनुभव होता है कि मेरा जीवन भक्तिहीन बीत रहा है, वो अपने में भक्ति का अभाव देखता है, पर ऐसा भी होता है कि उसका उत्साह बढ़ता है भक्ति की तरफ। व्यक्तिगत रूप से तो कहना कठिन है, अब वही व्यक्ति जानता है कि भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। कि इसके कुछ लक्षण होते हैं, न सोचती न कांक्षती। भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो उसको किसी वस्तु की कामना नहीं होती है और किसी चीज के न मिलने पर वो शोक नहीं करता है। भौतिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता है। भगवान की का नाम जपता है, भगवान को प्रणाम करता है, और यदि सांसारिक हलचल से, सांसारिक वस्तु के प्राप्ति और प्राप्ति से शोक नहीं करता और कामना नहीं करता, शांत रहता है, तो अनुमान क्या होता है कि उसकी भक्ति बढ़ रही है। क्योंकि भगवान के स्मरण से जो सुख मिलता है वो संसार के किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। कितना भी मात्रा में धन प्राप्त कर ले व्यक्ति या सम्मान प्राप्त कर ले, लेकिन भक्ति के सुख के बराबर नहीं हो सकता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय बात। जब तक भोगों की और मोक्ष की वासना हृदय में है तब तक भक्ति सुख का उदय नहीं हो सकता है। भक्ति में कितना आनंद है इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। तो भोगों की और यहां तक की मुक्ति की भी वासना जब निकल जाती है तब भक्ति के सुख का अनुभव होता है। और भक्ति करने से ही धीरे धीरे सब वासनाएं निकल जाती है। भुक्ति वासना मुख्य है इस समय, जैसे धन संग्रह करने की भावना। कैसे हम अधिक धन संग्रह कर लें और धन संग्रह करके फिर कामों पर भोग, विविध भोग करें और सांसारिक सुख सुविधा से बेटर रहने का स्थान, बेटर अकोमोडेशन और बेटर सवारियां, बेटर भोजन सब प्राप्त करने की इच्छा का नाश होना भक्ति में विकास का प्रमाण है। पहले के राजा महाराजा अपना राज छोड़कर वन में चले जाते थे, वन में जहां कोई सुविधा नहीं, हिंसक जीव रहते हैं, वहां चले जाते थे और अपने परिवार वालों को फोन नहीं करते थे कि तुम यहां आ जाना, यहां हमको राशन पहुंचा देना। अपना लोकेशन भी नहीं बताते थे कि हम कहां वन में जा रहे हैं, विंध्याचल में जा रहे हैं या हिमालय में जा रहे हैं, कहीं नहीं बताते थे। तो कोई सुख है ना भगवान के स्मरण में वन में रहना, पर्वत में रहना, उनको अच्छा लगता था, लेकिन भगवान के विस्मरण से युक्त जन संसद में रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। भगवान का स्मरण होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है भगवान ऋषभदेव का और राजा नाभि का। भगवान ऋषभदेव के पिता नाभि महाराज वो बद्रिकाश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ और वानप्रस्थ जीवन में वहां भजन करते थे और भगवान को प्राप्त किए। राजर्षि भरत अभी पुलहाश्रम में चले गए राज त्यागने के बाद। अभी तो घर पर वर्णन है, अभी यहाँ की कथा में आगे भी चले जाएंगे वन में। तो दिन पर दिन विकास करना है, इसका अर्थ है जप करना महामंत्र का बहुत अच्छा से उच्चारण करके बढ़िया से 16 माला जप करना। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत संख्या में बहुत जप करें, 16 माला करें बहुत अच्छा से, यह कंप्लीट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वृंदावन में एक भक्त हमसे कहा कि मैं तीन लाख जप करना चाहता हूं। तो मैं हंसने लगा तो ठीक है कहां करेंगे। तो कहा आदि बद्री में पर्वत है, वन है, वहां मैं 3 लाख जप करूंगा। और महाराज जब कई करोड़ जप हो जाएगा, भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, तो मैं भगवान से कहूंगा कि महाराज को भी दर्शन दीजिए। तो भक्त गया और वहां जाने के बाद 7 दिन के बाद पता नहीं चला और वो पूरा स्कान छोड़ करके कहीं चला गया। बहुत तेज नहीं बनना चाहिए कि मैं बहुत जप करूंगा, बहुत पढ़ूंगा, भजन करूंगा। जो प्रभुपाद ने अन्य आचार्यों ने जो नियम सेट किया है कि इतना जप करना है, इतना मंगला आरती में भाग लेना है, गुरु पूजा में भाग लेना है, तो वो हमारे लिए परफेक्ट है, काफी है। ईमानदारी से हम वही करें, धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण के निकट पहुंच जाएंगे। बहुत प्रमाणिक पथ प्रभुपाद जी ने बनाया है। 16 माला कभी कभी उनसे भक्त लोग तर्क करते थे, ये 16 माला क्या है, बहुत जप करना चाहिए। लेकिन ज्यादा जप करने वाले 1-2 दिन किए, इसके बाद टोटल बंद कर दिए। कुछ यहां तक आग्रह किए हम राधा कुंड रहना चाहते हैं, प्रभुपाद मना करते थे। उन्होंने कहा 16 माला जप करो, मंगला आरती करो और 2 क्लास भगवद गीता शाम को और सवेरे भागवतम सुनो, तुम्हारे लिए यही काफी है। जो नहीं माने राधा कुंड गए और राधा कुंड के बाद दीवार चले गए। तो जो ये छोटा बंधन लग रहा है यही काफी है, 16 माला जप हमारे लिए परफेक्ट है। समय पर सो जाना, समय से जगना, मंगला आरती अटेंड करना और कुछ गीता पढ़ लेना, सुनना और भागवत पढ़ना, चैतन्य चेतावनी पढ़ना, यही हमारे लिए काफी है। हमें हरिदास ठाकुर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो एक दिन बनेंगे या एक सप्ताह के लिए हरिदास ठाकुर बनाएंगे। नियम जो प्रभुपाद जी ने बनाया है बहुत शोधित नियम है। वो आदमी अपने घर पर भी रहे तो वहां भी मंगला आरती कर सकता है, भगवान को प्रणाम कर सकता है, प्रसाद खा सकता है, और कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुछ वो मंदिरों को दे सकता है, कुछ सहायता हो जाएगी। तो ये सब धर्म है। स्वयं भजन करना और दूसरे जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनकी मदद करना। अगर आप एक भगवत गीता किसी को दिए खरीद करके या खरीदने के लिए दिए, कोई पढ़ेगा और उसके मन में कुछ भी कृष्ण भावना जगेगी तो सारा पुण्य आप पर जाएगा, आपका पैसा लगा इसमें। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रमाणिक चीज बोलते थे। उन्होंने बोला है, समय समय हम भक्ति के पथ पर बढ़ेंगे, मुख्य है आचार्यों के निर्देशन में चलना, वह जो कहते हैं वही करना। अच्छा, आप समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।
वन शॉर्ट क्वेश्चन महाराज। I was told that in Hari Bhakti Vilas, there is one statement when it's talking about chanting on mala. It says, Nam Nunam Nadikam Vapi. One should not chant more nor less than one's vow. When one has taken a vow to chant on mala, one should not chant less than that vow, and one should not chant more than that vow. And then if one is to chant more rounds, one should chant without counting.
तो भाव को मुख्य रूप से जो प्रभुपाद ने कहा है वही लेना चाहिए संकल्प। आज संकल्प कुछ ज्यादा किए कल कम किए ऐसा नहीं, जो करना है नियमित रूप से करें। यू आर राइट। हरे कृष्ण।